अध्याय एक, पृष्ठ संख्या 9, राग नारायणी। प्रचार में नारायणी दो प्रकार से गाया जाता है, प्रथम खमाज, दूसरे काफी थाट से। काफी थाट के नारायणी में ऋषभ व पंचम वादी संवादी हैं तथा गंधार वर्जित व कोमल नी प स्वर संगति का प्रयोग कर दिन के राग मानते हैं, परंतु इस प्रकार को शास्त्र आधार प्राप्त नहीं है तथा प्रचार में भी नहीं के बराबर है, और खमाज थाट के नारायणी राग को शास्त्र का पूर्ण आधार प्राप्त है। इस हेतु हम यहाँ इसी स्वरूप का वर्णन करेंगे। प्रस्तुत राग नारायणी खमाज थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गंधार व निषाद तथा अवरोह में केवल गंधार वर्जित है। इस कारण इसकी जाति औडव शाडव है। निषाद कोमल के अतिरिक्त अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। वादे ऋषभ, कुछ लोग षड्ज को भी मानते हैं, तथा संवादी पंचम को माना जाता है। गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर तथा षड्ज पंचम न्यास के स्वर हैं। मुख्य रूप से सूर मल्हार इसका संप्रकट राग है। इसी को बचा के नारायणी गाने बजाने में गायक वादक की कुशलता है। प्रचार में जो नारायणी राग में ऋषभ स्वर को वादी मानने का प्रचलन हो गया है, यह राग के स्वरूप को देखते हुए कुछ उचित प्रतीत नहीं होता। इस राग का मूल आधार दक्षिण का संगीत ग्रंथ राग लक्षण है। उसमें वादी स्वर के लिए इस प्रकार कहा गया है, यथा नारायणीति रागश्च संन्यासम शांसक ग्रहम। शांसक ग्रहम से स्पष्ट है कि दक्षिण में भी ऋषभ नहीं वरन षड्ज वादी मानने का रिवाज है। हमारे उत्तर भारत में वर्तमान समय में नारायणी का स्वरूप इस प्रकार है, यथा सा रेसा रेसा मंद्र कोमल नी ई मंद्र ध मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा मंद्र ध सा रे सा रे म रे सा कोमल नी मंद्र ध मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा रे म प कोमल नी ध अ प ध प म रे सा मंद्र ध सा रे सा मंद्र कोमल नी ई मंद्र ध मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा रे म प कोमल नी ध अ प म प ध तार सा ध तार सा तार रे तार सा कोमल नी ई ध अ प म प ध तार रे तार सा कोमल नी ध अ प म रे प म प कोमल नी ध अ प म प म रे सा। पृष्ठ संख्या 10। आजकल के नारायणी राग का स्वरूप उपरोक्त स्वर विस्तार का ही द्योतक है, अर्थात इसी आधार पर नारायणी राग गाया जाता है। मार्मिक गुणिजन उपरोक्त विस्तार में ऋषभ का प्रयोग तथा महत्व समझ सकते हैं कि कहीं पर भी ऋषभ न्यास युक्त नहीं है। यह सत्य है कि नारायणी से जो राग संबंधित है, राग सोरठ और सोरठ राग में ऋषभ का न्यास तथा वादी स्वर संबंधी महत्व है, परंतु यहाँ नारायणी राग में ऋषभ का अलंघन बहुत्व है, न्यास बहुत्व नहीं है। इस हेतु नारायणी में न्यास रहित ऋषभ को वादी बनाने का कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। केवल दादा वाक्यम प्रमाणकम कहावत के अनुसार जो लोग कहते चले आ रहे हैं वही अब भी कह रहे हैं। लोग विचार नहीं करते कि जो वास्तविक स्वरूप है उसके अनुसार राग नियम बना है या नहीं। जो लोग इसमें ऋषभ वादी मानते हैं वह नारायणी में सारंग का मिश्रण मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंडित भातखंडे जी ने अपने ग्रंथ में नारायणी की चर्चा करते हुए लिखा है, ऋषभवादिनम मत्वा भवेत सारंग सन्निभा, अर्थात उन्होंने भी सारंग को ध्यान में रखकर रे को वादी माना है, परंतु इसके आगे लिखते हैं कि इस राग में ग वर्ज्य है, इस कारण सारंग का आभास होने लगता है। आभास शब्द से स्पष्ट है कि नारायणी में सारंग का मिश्रण नहीं बल्कि गंधार वर्ज्य होने के कारण सारंग का आभास है, और आभास के आधार पर स्वर को वादी नहीं बनाया जा सकता है। पंडित भातखंडे जी ने इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना है, जो सारंग के विपरीत है। गायन समय को देखते हुए लगता है कि पंडित भातखंडे जी ने सोरठ को ध्यान में रखकर ही इस राग में ऋषभ पंचम वादी संवादी माना है, परंतु यह दृष्टिकोण भी न्याय संगत नहीं दिखता, क्योंकि यह राग दुर्गा और सोरठ के मिश्रण से बना है। इसका प्रमाण दक्षिण के ग्रंथ राग लक्षण ही से लीजिए। आरोह गनी वर्ज चाव्य रोहे च वर्जितम सारे म प ध तारसा तारसा नि ध प म रेसा। पृष्ठ संख्या 11। यहाँ निषाद कोमल समझना चाहिए, क्योंकि इसी श्लोक के उपरोक्त पंक्ति में हरि काम बोजी मेलाश्च कहा गया है। खमाज को संस्कृत में हरि काम बोजी कहा गया है। उपरोक्त आरोह अवरोह में आरोह में दुर्गा और अवरोह में सोरठ सदृश्य है। राग स्वरूप में भी रे म प कोमल नि ध म प कोमल नि ध प म रे, यह स्वर समूह सोरठ के स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि ऋषभ स्वर को न्यास तथा वादी मानेंगे तो यहाँ अवरोह का सोरठ अपना ही रंग दिखाएगा। इस हेतु सोरठ और दुर्गा के मिश्रण से बना हुआ नारायणी के इस मिश्र स्वरूप को इन दोनों रागों से पृथक रखने के लिए इस राग के विस्तार में केवल षड्ज पंचम को न्यास युक्त करना तथा इन्हीं दोनों स्वरों को वादी संवादी मानना, अर्थात षड्जवादी पंचम संवादी करना लेखक के मत से न्याय संगत है। जो लोग इस राग में सारंग का स्पष्ट अंग मानते हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपनी पुस्तक राग विज्ञान में इस राग में स्पष्ट सारंग अंग माना है, और यह भी कहा है कि यह दक्षिणात्य पद्धति का राग है, जबकि दक्षिण के ग्रंथ राग लक्षण में इसको हरि काम्बोजी खमाज थाट के अंतर्गत माना जाता है। कहाँ हरि काम्बोजी थाट और कहाँ सारंग, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है। पंडित भातखंडे जी रचित क्रमिक पुस्तक मालिका के पांचवें भाग में नारायणी राग में एक बंदिश नारायण को नाम भजले यह दिया गया है, जिसमें सारंग अंग विद्यमान है। इसको शास्त्र आधार रहित नारायणी का एक भिन्न प्रकार मानना चाहिए, परंतु पंडित भातखंडे जी ने जो स्वयं राग की चलन और अंत में राग का स्वर विस्तार लिखे हैं उसमें कहीं भी सारंग अंग नहीं है। उसमें दुर्गा तथा सोरठ का ही मिश्रण दिखाई पड़ता है। उसमें कहीं भी कोमल नी प या रेमा प म कड़युक्त रे, इस प्रकार सारंग अंग का दर्शन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पंडित नारायण लक्ष्मण गुणे जी ने भी अपने संगीत प्रवीण दर्शिका पुस्तक के प्रथम भाग में नारायणी का वर्णन करते हुए सारंग और दुर्गा बिलावल थाट का आभास कहकर तार रे तार म तार रे तार सा कोमल नी प रेम रेसा, इस प्रकार सारंग अंग की चर्चा की है। परंतु इसके विपरीत उन्होंने अपनी बंदिशों में तथा आलाप व तान में कहीं भी सारंग अंग स्पष्ट नहीं किया है। पूर्ण रूप से बंदिश और आलापतान दुर्गा और सोरठ राग पर आधारित है। कोमल नी प स्वर संगति का प्रयोग कहीं भी नहीं है। हाँ, गंधार वर्जित होने के कारण रेमा प म रे स्वर संगति स्वाभाविक है, जिसमें उन्होंने अधिकतर म रे स्वर संगति पर मींड का चिन्ह लगाया है, जो मल्हार या सोरठ अंग का द्योतक है। पृष्ठ संख्या 12। अभिप्राय यह है कि पंडित विनायक नारायण पटवर्धन जी का नारायणी राग इस राग के मूल आधार से बिल्कुल भिन्न है, और पंडित भातखंडे जी तथा पंडित नारायण लक्ष्मण गुणे जी इस राग की चर्चा में सारंग अंग का आभास या मिश्रण कहा तो है, परंतु जो वास्तविकता है उससे ये दोनों गुणिजन दूर नहीं जा सके, क्योंकि रागालाप में इन दोनों विद्वानों ने दुर्गा और सोरठ का ही आधार ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि दुर्गा और सोरठ के मिश्रण से ही नारायणी का उद्गम मानना विवेकपूर्ण है। गंधार वर्जित होने के कारण सारंग का आभास अवश्य होता है, परंतु आभास मात्र से किसी राग का मिश्रण मानना कहाँ तक उचित है? भैरवी गाते समय मंत्र कोमल नी सा कोमल ग म प कोमल ग म कोमल ध प कोमल ग म कोमल ध कोमल नी तार सा। इस प्रकार कोमल ग म कोमल ध कोमल नी तार सा के लगाव से मालकंस का आभास होता है, तो क्या भैरवी में मालकंस का मिश्रण मानेंगे? इस प्रकार का आभास तो राग में होता ही रहता है, जो राग के मुख्य अंग द्वारा नष्ट भी होता रहता है। इस हेतु नारायणी में केवल सारंग का आभास मात्र ही मानना और कोमल नीप इत्यादि सारंग के स्वर समूह को इससे दूर रखना प्रस्तुत राग के हित में है। नारायणी के मिश्रण के संबंध में मुख्य बात यह है कि इसका आरोह दुर्गा और अवरोह सोरठ है, यथा सारे म प ध तार सा कोमल नी ध म रे सा। फिर भी इस राग के जो तीन या चार स्वर समूह हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है, यथा पहला है सारे सा मंद्र कोमल नी ई मंद्र ध मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा, दूसरा सारे म प म रे सा, तीसरा रे म प कोमल नी ध म प कोमल नी ध अ प, चौथा म प ध तार सा ध तार सा तार रे तार म तार रे तार सा कोमल नी ई ध अ प। पृष्ठ संख्या 13। इन्हीं स्वर समूहों को परस्पर मिलाने से नारायणी राग का स्वरूप बनता है। इन स्वर समूहों में अब यह देखना है कि इनको मिलाने से कैसे दुर्गा और सोरठ अंग तथा नारायणी के निजी स्वर संगति का दर्शन होता है, और रागालाप में इन दोनों रागों का संतुलन बनाए रखते हुए संप्रकृत रागों से किस प्रकार मुख्य राग के स्वरूप को स्वच्छ रखा जा सकता है। सारे सा मंद्र कोमल नी ई ध मंद्र मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा, यह नारायणी का निजी स्वर समूह है, किसी अन्य राग का नहीं है। सारे म प म रे सा, इसी स्वर समूह से सारंग का भास होता है, परंतु इसमें जो म रे स्वर की मींड है यह सारंग के आभास को दूर करता रहता है। इस राग का जो यह म रे की संगति है यह बहुत ही मार्मिक है। यह स्वर संगति सारंग का तो इसलिए नहीं है कि म रे में मींड का चिन्ह है और सोरठ का भी नहीं है, क्योंकि सोरठ में रेमा प कोमल नी ध प म रे, इस प्रकार म रे स्वर को पूर्ण दीर्घ करके पुनः म रे मंद्र नी ई सा का प्रयोग करते हैं और नारायणी में इस स्वर संगति के बाद सीधे षड्ज पर न्यास करते हैं, जिसके कारण म रे की पुनरावृत्ति में एक नयापन मिलता है जो अन्य राग में नहीं है। दुर्गा तथा शुद्ध मल्हार में भी यह स्वर संगति है, परंतु भेद यह है कि दुर्गा में म रे की संगति के साथ मंद्र ध सा या रे मंद्र ध सा अवश्य ही जुड़ा होता है। शुद्ध मल्हार का इसलिए नहीं है कि उसमें म रे म इस प्रकार मध्यम का ध्यान करना पड़ता है, परंतु नारायणी में इस स्वर संगति को गाते समय षड्ज का खिंचाव रहता है, जैसे म रे सा। इस कारण नारायणी राग गाते समय इस स्वर संगति को भली भांति समझना चाहिए। नारायणी गाते समय ध प म रे सा मंद्र ध सा रे सा इत्यादि इस स्वर समूह से जब दुर्गा अंग सामने आता है तब कोमल निषाद उसका निवारण करता रहता है, और जब रेमा प कोमल नी ध प म रे इस स्वर समूह से सोरठ सामने आने लगता है तो पूर्वांग का म रे सा स्वर संगति या म प ध तार सा की चलन से सोरठ सामने से हटता रहता है। यह तो मिश्रण वाले राग का बचाव हुआ, परंतु नारायणी का संप्रकृत राग मुख्य रूप से सुर मल्हार है। दोनों रागों में अवरोह एक सा है तथा रेमा प कोमल नी ध म प कोमल नी ध प या तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प यह स्वर समूह दोनों रागों में प्रयोग होता है। अंतर यह है कि सुर मल्हार में उत्तरांग में सारंग अंग अधिक होने से धैवत का महत्व कम हो जाता है, यथा तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध प। इस स्वर समूह से हमेशा धैवत या तो मध्यम के साथ अन्यथा पंचम के साथ अवश्य जुड़ा होता है, जिससे राग में धैवत अस्तित्वहीन हो जाता है। परंतु नारायणी दुर्गा अंग का राग होने के कारण इसमें धैवत दीर्घपूर्ण है, यथा रेमा प कोमल नी ध म प कोमल नी ध अ प म प ध तार सा कोमल नी ध ध प म प ध कोमल नी ध अ प। इस भांति सुर मल्हार से यह राग धैवत के भिन्न भिन्न लगाव के कारण काफी भिन्न है। इस कारण नारायणी के प्रस्तार में सुर मल्हार किसी प्रकार का रोध उत्पन्न नहीं करता है। पृष्ठ संख्या 14, स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। षड्ज तो सभी रागों में श्रेष्ठ स्वर होता ही है, वैसे इस राग में यह आंशिक न्यास बहुत्व का स्वर है। इसके अतिरिक्त ऋषभ इस राग में रेमा प या प म रेमा रेसा इस भांति आरोह अवरोह में बराबर सामने आता है। यद्यपि यह स्वर न्यासहीन है, परंतु आरोह अवरोह में इसका प्रयोग अधिक है, और म रे की संगति मींड युक्त होने से ऋषभ दीर्घ भी दिखता है। इन कारणों से इस राग में ऋषभ का अलंगन बहुत्व स्थान है। मध्यम रेमा प प म रे इस प्रकार आरोह अवरोह में अनुवादी के रूप में प्रयोग होता है। इस राग में इसका अल्पत्व स्थान है। कभी कभी रे प म प कोमल नी ध प इस भांति के स्वर संगत में मध्यम का लंघन भी दिखता है। यहाँ रेपक की संगति को दुर्गा से संबंध नहीं मानना चाहिए। दुर्गा में ध म रे प इस प्रकार रे प के बाद पंचम अधिकतर न्यास युक्त होता है, परंतु नारायणी में ऐसा नहीं है। वह तो अन्य स्वर समूह के साथ जुड़ा है, जिस प्रकार देश तथा सोरठ में रे प म ग रे या काफी में रे प म कड़ुक्त कोमल ग रे इस भांति यहाँ नारायणी में रे प म प कोमल नी ध प स्वर संगति में रेपा को स्वर संगति समझना चाहिए। पंचम का इसमें संपूर्ण न्यास बहुत्व का स्थान है। यह आरोह या अवरोह में न्यास युक्त है, यथा सारे म प म रेसा, रेसा मंद्र कोमलनी, मंद्र ध मंद्र म, मंद्र प मंद्र ध सा, मंद्र ध सा रेमा रेमा प, रेमा प कोमल नी ध अ प, म प ध तार सा कोमल नी ई ध अ प। इस भांति यह स्वर राग में स्वतंत्र होकर प्रयोग होता है। कोमल नी ध म प, कोमल नी ध अ प स्वर समूह के ध म की संगति में पंचम का लंघन है, मगर पुनः ध म के बाद प कोमल नी ध अ प इस प्रकार न्यास युक्त सामने आकर पंचम प्रबल हो जाता है। पृष्ठ संख्या 15। धैवत इस राग का अलंघन तथा दीर्घ बहुत्व का स्वर है। यह राग में म प ध तार सा ध तार सा तार रे कोमल नी ध अ प, म प कोमल नी ध अ प म प ध तार सा, रेमा प कोमल नी ध अ प म प ध तार सा। इस तरह यह स्वर राग में न्यासहीन है, परंतु आरोह में ध तार सा तार रे तार सा दुर्गा तथा अवरोह में तार सा कोमल नी ध म प कोमल नी ध अ प सोरठ अंग की प्रधानता के कारण धैवत का राग में महत्वपूर्ण स्थान है। लगाव की दृष्टि से निषाद का इस राग में अनाभ्यास अल्पत्व ही दिखता है, परंतु ठाट की दृष्टि से यह स्वर राग में बहुत महत्व का स्वर है, क्योंकि इसी कोमल निषाद के कारण यह राग खमाज ठाट के अंतर्गत माना जाता है। ऐसे राग में यह स्वर अवरोह में तार सा कोमल नी ध प म प, प कोमल नी ध अ प इस प्रकार कभी कभी दीर्घ भी हो जाया करता है, यथा ध तार सा तार रे तार सा कोमल नी ध म प, परंतु इसके बाद ही म प कोमल नी ध अ प स्वर समूह के साथ अल्प हो जाता है। इस प्रकार यह राग अपने मोहक स्वरूप से प्रचार में अपना एक स्थान बना चुका है, अर्थात सभी गायक वादक इससे प्रभावित हैं। आरोह सारे म प ध तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी ध प म रे सा। मुख्य स्वर समूह रेमा प कोमल नी ध म प कोमल नी ध अ प म रे सा।